नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के केंद्र सरकार के निर्णय से नागरिकों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के विभिन्न स्थानों पर कल से पीएम उदय सिंगल विंडो कैंप आयोजित करेगा। और दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी मामले में 50 अवैध सिलेंडर जब्त किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार की ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती का निर्णय नागरिकों के लिए राहतकारी साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस फैसले के अंतर्गत पेट्रोल पर कर 13 रूपये से घटाकर 3 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रूपये से घटाकर 0 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाया गया ये निर्णायक कदम पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उत्पाद शुल्क में कमी से तेल कंपनियों पर बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सकेगा। सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF पर निर्यात शुल्क लगाया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इससे पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उपभोक्ताओं पर पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। ये अगले 2 दिनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और LPG तथा PNG की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है।
हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ LPG हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। LPG वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद कॉमर्शियल LPG की आपूर्ति को 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब प्रतिदिन लगभग 6,300 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस संशोधित व्यवस्था में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 3,375 सिलेंडर प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं। वहीं श्रम प्रधान उद्योगों जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर के लिए 1,800 सिलेंडर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और केटरिंग के लिए 225 सिलेंडर तथा प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए 5 किलोग्राम सिलेंडर की 684 दैनिक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। श्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ना तो किसी प्रकार की कमी है और ना ही जमाखोरी की स्थिति सामने आई है। उन्होंने कहा कि लगातार निगरानी के चलते बुकिंग और वितरण सामान्य रूप से जारी है तथा कमी की अफवाहें निराधार हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मंशा झुग्गियों में रहने वालों को सम्मानजनक जीवन देने की नहीं थी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो आधुनिक, कुशल और जवाबदेह है।
हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ उन लोगों को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। ये सब कुछ नहीं हो पाया था आज तक पिछली सरकारों के राज में, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी कि कभी झुग्गी वालों को एक सम्मान पूर्वक जीवन मिल सके। पहली बार झुग्गी निवासियों ने यह महसूस किया है कि बीजेपी आई है, सरकार बदली है, तो उन्हें सम्मान का जीवन मिल रहा है।
दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान यमुना की सफाई केवल दांव तक सीमित रही। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में वर्तमान दिल्ली सरकार लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है कि दिल्ली के हर घर को साफ पानी हम लोग दें। दिल्ली में यमुना मैया को साफ करना ये हमारा कमिटमेंट, ये हम दिल्ली की जनता से वायदा किए कि हम अपने कार्यकाल में यमुना मैया को साफ करेंगे।
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आज स्किल कनेक्ट 2026 के अंतर्गत पहला इंडस्ट्री अकादमिक कॉन्क्लेव आयोजित किया। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये पहल शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय स्थापित कर युवाओं को रोजगारमुख कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत 2000 से अधिक नियोक्ताओं के माध्यम से 30,000 से ज्यादा इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री सूद ने छात्रों द्वारा लगाए गए नवाचार और कौशल आधारित प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन भी किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने बताया है कि राजधानी के विभिन्न स्थानों पर कल से दूसरे चरण का प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना PM उदय सिंगल विंडो कैंप आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कैंप के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को सुविधा प्रदान करते हुए नागरिकों को पंजीकरण, लंबित मामलों के समाधान, दस्तावेज तैयार करने तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज वैश्विक भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें राजधानी दिल्ली के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के उद्घाटन से पहले सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हवाई अड्डा वाणिज्य और संपर्क को बढ़ावा देगा और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ कम करेगा। उन्होंने कहा कि नोएडा हवाई अड्डा देश की प्रमुख हरित परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्री सेवाओं के अतिरिक्त इसमें कार्गो परिवहन की अनुकूल प्रणाली है, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नई दिल्ली के रोहिणी इलाके में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 50 अवैध LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस रैकेट में इस्तेमाल होने वाला एक वाहन और रीफिलिंग सेटअप भी बरामद किया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का कल अंतिम दिन है। 13 फरवरी से आरंभ इस आयोजन में 7 प्रमुख खेलों में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। इनमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी शामिल है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये आयोजन खेलों के माध्यम से एकता और उत्साह का प्रतीक बनकर उभरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ एक प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था, जो अब संकल्प, दृढ़ता और उभरते चैंपियन की सशक्त विरासत बन चुका है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वीडियो में कहा गया है कि देश में बड़े संकट के कारण लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। इस फिल्मोत्सव के आयोजन का उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक सिनेमा, सृजनात्मक उद्योग और फिल्म पर्यटन के क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्देशक निखिल आडवाणी ने कहा कि दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा गंतव्य बन सकते हैं। राजधानी में आज दिनभर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के चौथे दिन आज भाजपा विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में रखी। शून्यकाल में सड़कों किनारे कब्जे, चरमराती यातायात व्यवस्था के साथ ही विधायकों ने कहा विशेष उल्लेख के मामलों पर अधिकारी सुनते नहीं हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बल देकर कहा मुख्य सचिव से बैठक में ये तय हुआ था कि सभी मामलों के समाधान की सूचना विधायकों को दी जाएगी। अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी अन्यथा मामले प्रश्न संदर्भ कमेटी को भेजे जाएंगे। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय ने उनके इलाके में सड़कों के किनारे अवैध तरीके से कार धुलाई डेंट पेंट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। वहीं भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने रिठाला क्षेत्र के यातायात की खराब व्यवस्था की ओर बल दिया। सड़कों किनारे पार्किंग, शादियों के समय अतिक्रमण से जाम का जिक्र करते हुए भाजपा विधायक अशोक गोयल ने उल्टी दिशा से आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं संगम विहार से विधायक चंदन कुमार चौधरी ने सरकार का ध्यान आयुष्मान कार्ड धारकों का अस्पतालों द्वारा इलाज न करने की ओर सदन को अवगत करवाते हुए कहा कि इससे लाभार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अवैध ई कबाड़ और बैटरी गोदाम के कारण आग की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि प्रदूषण विभाग के अधिकारी का रवैया नकारात्मक है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर वर्ष 2017-18 से 2021-22 की सीएजी रिपोर्ट में कई खामियों का उल्लेख किया। इसके बाद दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड की अनियमितताओं के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार राजधानी में घरेलू बोरवेल के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत घरेलू उपयोगकर्ताओं को आसानी से अनुमतियां दी जाएंगी और नौकरशाही से जुड़ी एक बाधाओं को दूर किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली शुल्क पर बोरवेल की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर की वर्तमान पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन सरकार का लक्ष्य है। इसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने वर्ष 2018-19 के बीच दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों पर आईसीएजी रिपोर्ट पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कार्य जमीनी स्तर पर नहीं किया। वहीं दिल्ली आबकारी नीति पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये नीति कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर लिया गया पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक कदम था। श्री सिरसा ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 के बीच दिल्ली को लगभग 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार राजधानी में स्वास्थ्य, जलापूर्ति, परिवहन और राजस्व विभाग में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मूनक नहर के ऊपर 5000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड बनवा रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर खुले हैं तथा इस वर्ष 3 नए कॉरिडोर बनेंगे। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के केंद्र सरकार के निर्णय से नागरिकों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली सरकार झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के विभिन्न स्थानों पर कल से पीएम उदय सिंगल विंडो कैंप आयोजित करेगा और दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी मामले में 50 अवैध सिलेंडर जब्त किए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।